तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
We are seeing Dhyan Yoga, chapter 6 of Bhagavad Gita. And Lord has said about the Dhyan Yoga from verse number, sloka number 10 to 32. Whole procedure of Dhyan Yoga is discussed within these slokas. Out of which, sloka number 29, 30, 31, they speak about the fruit of Dhyan Yoga. What is the fall? Hari, I have to speak in Hindi. Acha. तो 10 से लेके 32 तक पूरा ध्यान योग की विधि और उसका फल बताया गया। उसका फल कैसे हम ध्यान योग में हम सफल हो सकते हैं और उसके बाद में फल क्या मिलेगा, तो 29, 30 और 31 के अंदर में हमको फल भी बताया गया। तो क्या फल है? तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मई पश्यति, जो सब जगह मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, एक तो ये हो गया। और उसके बाद में इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र सर्वदर्शन, 29वें श्लोक में होता है समदर्शी, सब जगह एक चीज देख रहा है, समदर्शी हो गया। और सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमाश्रित सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते, जब वो वर्तन करता है, जब वो व्यवहार करता है दूसरों के साथ में, तो भगवान कहते मेरे साथ ही व्यवहार कर रहा है, क्योंकि दूसरों में मैं ही हूं ना, हर जीव के अंदर मैं ही बैठा हुआ हूं और दूसरों से वो व्यवहार करता है तो मेरे से ही व्यवहार कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो भगवान यहां पर जो है उसके बाद में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया भगवान को, भगवान आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, आपने 18वें श्लोक में कहा यदा विनीते चित्तम, जब अपने मन को आत्मा में हम लगा देते हैं, मतलब मन और आत्मा एक हो गया, मन और आत्मा एक हो गया मतलब मन जो है पूरी तरह संयमित है, पूरी तरह संयमित मतलब उस मन में कोई वृत्ति नहीं है, जब मन और आत्मा एक हो गया। फिर आपने 25वें श्लोक में भी कहा शनैः शनैः उपरमेत, अगर मान लो फिर भी बाहर जा रहा है विषयों में मन गया तो उसको फिर से वापस लाओ, आस्ते 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 तो फिर से वापस ले आओ उसको। अर्जुन कहता है मेरे लिए ये संभव नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मेरा मन कभी भी जो है ऐसा नहीं हो जाता है कि मन और आत्मा एक हो जाए। मन और आत्मा एक हो जाए मतलब मन वृत्तिहीन हो जाए, कोई वृत्ति नहीं हो, ऐसा हमारा मन नहीं हो सकता। और मन बराबर सम रहे, सम रहे, सम रहने का मतलब है कि सुख में और दुख में मन जो है एक जैसा रहे, ऐसा नहीं होता है हमसे। तो एक तो मन वृत्ति रहित करना हमारे लिए मुश्किल है, नंबर दो मन को सम रखना, सुख और दुख दोनों में सम रखना, ये भी बहुत मुश्किल है। आप जब तक जो है गीता की क्लास में बैठे हो मन सम है, मगर जैसे ही क्लास खत्म हुई अगर विषम परिस्थिति आ गई तो इसी मन को सम रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। विषम स्थिति के अंदर जो है हमारा मन फिर विषम हो जाता है, सम नहीं रहता है। और ये दोनों चीजें भगवान ने बताई कि आपका जो है ध्यान योग में सफलता मिलने से ये दो चीज घटेगी, एक तो मन आत्मा में लग जाएगा, दूसरा जो भी परिस्थिति आएगी उसमें मन सम रहेगा, सुख में भी सम रहेगा दुख में भी सम रहेगा। मगर हमारा अनुभव क्या है, हमारा अनुभव है कि हमारी विषम परिस्थिति आने से हमारा मन जो है अब सम नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, मन विषम हो जाता है। अतः सम स्थिति बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अब यहां पर प्रश्न अर्जुन का देखिए, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योग हम बता रहे हैं तुमको। अर्जुन ने शब्द यूज किया साम्येन, आप जो सम योग की बात कर रहे हैं, देखो सम योग की मतलब सुख दुख के अंदर सम रहना या सबके अंदर एक को देखना सम। तो अर्जुन ध्यान योग को जो है साम्य योग कह रहा है। यो एवं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरा, मेरे को नहीं लग रहा है कि यह हो सकता है। विषम स्थिति के अंदर मन को सम रखना और सब जगह सम रखना ये बहुत मुश्किल है। और मन को स्थिति स्थिराम मतलब वो मन विचलित नहीं हो, एक जगह स्थिर रहे। जैसे उसने एक एग्जाम्पल भगवान ने दिया, जैसे एक दीपक जो है बिना वायु के स्थान पर एक लौ खड़ी रहती है, वैसे मन स्थिर होना चाहिए, वैसा मन स्थिर होना चाहिए। अर्जुन कहता है कि ये हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हमारा मन चंचलत्वात्, क्योंकि ये चंचल है, बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना, मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। और सुख दुख में सम रखना वो भी मुश्किल है, दोनों ही मुश्किल है। तब वो एक और एग्जाम्पल उसमें देता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवद्रिणम, ये मन कैसा है, चंचल है, प्रमाथी है, प्रमथनशील है, बलवत है, बहुत बलवान है, दृढ़म बोलो दृढ़ भी है। तस्याम निग्रह मन्ने वायु रिव सुदुष्करम, मेरा अपना मानना है कि जैसे हम वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते वैसे हम मन को भी नहीं कंट्रोल कर सकते। अब मन और वायु के अंदर समता देखिए, मन भी अमूर्त है वायु भी अमूर्त है। देखो कैसा आप सुंदर भगवान ने एग्जाम्पल अर्जुन ने दिया है, वायु, वायु का कोई फॉर्म नहीं है, कोई रूप नहीं है, मन का भी कोई फॉर्म नहीं है, अमूर्त है दोनों। और दोनों ही कैसे हैं कि दोनों ही प्रमाथी हैं, प्रमथनशील हैं, बलवत हैं, काफी इनमें शक्ति है, दृढ़ हैं, उनको हिलाना थोड़ा मुश्किल काम है। तस्याम निग्रह मन्यम, ये करना बहुत ही कठिन है। क्यों, क्योंकि ये तो मन कैसा है, बोला मन तो बराबर चलता रहता है। गुरुदेव कहते थे मन क्या है, फ्लो ऑफ थॉट, जहां वृत्तियां चलती रहती हैं, उसको स्थिर करना असंभव है। जैसे चलती नदी के ऊपर में रंगोली करना असंभव है, चलती नदी के ऊपर में रंगोली करना असंभव है, वैसे ही चलते हुए मन को स्थिर करना असंभव सा है। अर्जुन कह रहा है ऐसा, ये ऐसा संभव नहीं है। सुदुष्करम, भगवान कहते हैं ठीक है, अब तुमने प्रश्न किया है, हमको उत्तर तो देना ही होगा, देना ही होगा। तो क्या उत्तर है? 35वां श्लोक।
श्री भगवान उवाच,
श्री भगवान उवाच,
असंशयं महाबाहो,
असंशयं महाबाहो,
मनो दुर्निग्रहं चलम्, मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय,
अभ्यासेन तु कौन्तेय,
वैराग्येन च मुह्यते गृह्यते,
वैराग्येन च गृह्यते,
असंशयं महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येन च गृह्यते।
असंशयम्, असंशयम् निस्संदेह, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संशय नहीं है। महाबाहो, भगवान अर्जुन को कहते हैं महाबाहो। मनो दुर्निग्रह चलम, मन जो है बहुत दुर्निग्रह, बड़ी कठिनता से उसको आप जो है कंट्रोल, उसको संयम कर सकते हो। चलम, चलम, ध्यान से पढ़िए, भगवान ने वर्ड यूज किया, शब्द यूज किया चलम, और अर्जुन ने क्या वर्ड यूज किया, शब्द यूज किया चंचल। चंचल, हम देखेंगे चंचल और चलम में क्या फर्क है, क्यों भगवान चलम कहते हैं, क्यों नहीं भगवान ने चंचल कहा इसको। तो सबसे पहले आपको जैसा हमने आगे भी बताया कि जिस श्लोक के अंदर भगवान अर्जुन का नाम लेते हैं वो श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस श्लोक में भगवान ने दो बार कहा अर्जुन को, एक बार महाबाहो कहा और दूसरी बार कौन्तेय कहा, दूसरी बार कौन्तेय कहा, इसलिए ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। अच्छा देखो, भगवान ने कहा 23वें श्लोक में, दुख संयोग वियोग वाला यह योग है, आगे हमने देख चुके हैं कि यह योग कैसा है, दुख का जो संयोग होता है उसे वियोग कर देता है, मतलब दुख से हमको छुटकारा दिला देता है, ऐसा ये ध्यान योग है। और कौन लोग इसको कर सकते हैं, कहते हैं अनिर्विघ्न चेतसा, जिसके चित्त में, जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं है, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो भगवान कहने का मतलब क्या है, मन का निग्रह किया जा सकता है। जब आपके मन के अंदर कोई उद्वेग नहीं है तब उस मन का निग्रह किया जा सकता है, और इसे निश्चय पूर्वक करना चाहिए, ऐसा भी भगवान कहते हैं, निश्चय पूर्वक इसको करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई कहे कि मन पर निग्रह असंभव है तो उसका उत्तर भगवान देते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुग्रह चलम। अर्जुन ने कहा कि यह संभव नहीं है, भगवान भी कहते हैं एकदम ठीक है, उसका संयमन करना बहुत मुश्किल है, मगर चलम कहते हैं। अर्जुन ने चंचल वर्ड यूज किया और भगवान ने चलम। चंचल माने मन जो है बहुत विक्षिप्त है, रेस्टलेस है, और उसको हम शांत नहीं कर सकते। चंचल का माने मन जो है राजसिक हो गया, बहुत विक्षिप्त हो गया है, बहुत चंचल है, उसको हम संयमन, नियमन नहीं कर सकते। मगर भगवान कहते हैं मन चंचल नहीं है, मन चलम है। चलम का मतलब है माने कि ये मन विक्षिप्त है, उसे शांत कर सकते हैं, उसे हम शांत कर सकते हैं। देखो हर रात में आपका मन शांत होता है, कोई वृत्ति नहीं रहती है, शांत होता है। जब मन शांत होता है तभी आपको नींद आती है, जब तक मन चलता रहता है तब तक नींद नहीं आती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आज तक ये नहीं बता पाया कि हम कितने बजे सोए, कितने बजे सोए का मतलब मन चल रहा है। जब आप सो जाते हैं मन नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है कितने बजे थे, हमारा मन हम कितने बजे सो गए पता ही नहीं लगता है। तो ये चलता हुआ मन शांत होता है, ये हमारा सबका अनुभव है। तो निग्रह के देखिए दो तरीके होते हैं, किसी भी चीज को निग्रह करने के लिए या मन को निग्रह करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है हठ निग्रह और दूसरा है क्रम निग्रह। हठ निग्रह क्या है? जोर से उसको पकड़ लेना, जोर से पकड़ लेना, हठ निग्रह। क्रम निग्रह आस्ते 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 धीरे धीरे करना। देखो हठ निग्रह जैसे आप देखना नहीं चाहते हो, आप आंख बंद कर सकते हो, आंख बंद कर सकते हो, देखना बंद हो जाएगा, हठ निग्रह। आप सुनना नहीं चाहते हो, ईयर प्लग लगा लो, सुनना बंद हो जाएगा। आप सूंघना नहीं चाहते हो, अरे रुमाल लगा लो, बदबू आ रही है, आप रुमाल लगा लो। कोरोना नहीं घुस जाए, मास्क पहन लो, सारी दुनिया मास्क पहन रही है, बचना है तो। मगर मन को इस तरीके के किसी मैकेनिकल उपाय से आप नहीं रोक सकते। जैसे आंख बंद कर सकते हो, कान के अंदर ईयर प्लग लगा सकते हो, नाक को बंद कर सकते हो, मुंह को बंद कर सकते हो, आप मन को उस तरीके से बंद नहीं कर सकते। इसलिए हठ क्रम से, हठ निग्रह से कभी भी आपका मन रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा। आंख को रोक सकते हो, कान को रोक सकते हो, मन को बोल सकते हो स्टॉप थिंकिंग, नो ही विल नॉट लिसन, करके देख लो, कभी नहीं होगा, मन निग्रह नहीं होगा। मगर क्रम निग्रह से शांत हो जाएगा, क्रम निग्रह से मन शांत होगा, हठ निग्रह से शांत नहीं होगा। अच्छा, तो श्लोक की पहली लाइन जो है, भगवान कहना चाहते हैं कि हठ निग्रह काम नहीं करेगा यहां। इस श्लोक की पहली लाइन ये बताती है कि हठ निग्रह यहां काम नहीं करेगा, आपको क्रम निग्रह से मन को शांत करना होगा। तो मन के निग्रह का, मन को शांत करने का तरीका क्या है, इस श्लोक में बता दिया भगवान ने, कैसे आप शांत करेंगे। अभ्यास है न तो कौंतेय वैराग्य न च गृह्यते। निग्रह का तरीका क्या है? क्रम निग्रह। बोले इसको आप अभ्यास करो, वैराग्य, दो चीजें करनी है बस। मन को शांत करना है तो आपको अभ्यास करना होगा और वैराग्य चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में भी वही विचार कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। पतंजलि भी यही बात करते हैं, कोई दूसरा तरीका वहां नहीं बताया। अभ्यास भी करना है, वैराग्य, दो चीजें चाहिए आपको, तब आपका मन को निग्रह कर सकते हैं। तो वैराग्य क्या है भाई? वैराग्य हमें संसार से करना है। देखो दो तो चीजें हैं, या तो आप इसको आत्मा अंदर मानो, या भगवान मानो, या परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, और दूसरा संसार है, दो ही तो चीजें हैं। अभी हमारा वैराग्य किसके साथ में है? संसार के साथ में। हाँ, अभी वैराग्य परमात्मा के साथ में है, अंदर में जो आत्मा है, भगवान बैठे हैं, उससे वैराग्य है। राग किसके साथ में है? राग जो है संसार के साथ में है। वैराग्य का मतलब क्या है? कि आपको संसार से दूर हटना है, संसार को छोड़ना है। छोड़ने का मतलब क्या है देखेंगे, बताएंगे भगवान आस्ते आस्ते। देखो हमारी, हम क्या करते हैं, हमारे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हमारी इच्छाएं कौन कौन सी है? कामनी कांचन कीर्ति, बस यही तो है, तीन चीजें हैं इच्छाएं। या तो हमें कामनी चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, या दोनों को, पुरुष और स्त्री दोनों को कांचन चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, और नहीं तो कीर्ति, दोनों ही फेमस होना चाहते हैं, दोनों को यश चाहिए, फेम चाहिए। देखो कुछ कुछ तो वैराग्य हम सब में है, कुछ कुछ सब वैराग्य हम लोग में भी हैं। कैसा वैराग्य हमारे पास में भी है कि देखो अभी हम जो है खिलौनों से नहीं खेलते, कंचे नहीं खेलते, गोली या गुल्ली डंडा से नहीं खेलते हैं। आप इंडिया में जाओ तो साइकिल के पुराने जो टायर होते हैं, बच्चे उसी से खेलते रहते हैं। अब आपको कोई डॉल दे तो आप देखोगे ना, वैराग्य हो गया उससे, उसे वैराग्य हो गया है। तो ये चीजें हमारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं है, यूजलेस हैं। अब जो है दूसरी चीजें यूजफुल लगती हैं, ये भी संसार की चीजें हैं, मगर कौन सी चीजें हमको यूजफुल लग रही हैं? तो स्त्री को पुरुष अच्छा लगता है, पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, तो कैसे इससे वैराग्य करें, कैसे वैराग्य करें? तो हम लोग विवेक चूड़ामणि में भी पढ़े हैं, भज गोविंद में भी पढ़े हैं कि आप विचार करो क्या है, पुरुष को विचार करना चाहिए स्त्री क्या है। बोले स्त्री क्या है, केवल सात मेटीरियल थिंग्स है, उसमें सात मैटर्स हैं, और क्या है, सात तत्व हैं। क्या है ये सात तत्व? बोले हड्डी है, मांस है, रक्त है, मेदा है, चर्म है, रक्त है, दो किस्म के चर्म, यही तो है। अब विचार ये करो कि इसमें से कौन सी चीज आपको पसंद है। मल है, मूत्र है, कोई आपको मल मूत्र दे आप लोगे क्या? फैट आपको दे दे, मैदा, ब्लड, एक कप में ब्लड दे दे, आपको पसंद है? नहीं। मांस, हड्डी, मैरो, कुछ भी नहीं चाहिए। मगर ये सात चीजें जब इकट्ठी होती है तब आपको आकर्षण लगता है, पुरुष को स्त्री आकर्षित लगती है और अब स्त्री को पुरुष आकर्षित कर लगता है। तो इनसे हमको कैसे वैराग्य चाहिए? बोले इस तरीके से सोचो। ठाकुर रामकृष्ण भी ऐसे ही कहते थे, एक ही चीज कहते थे, या स्त्री को पुरुष के ऊपर सोचना चाहिए, ही इज नेवर ट्रस्टवर्दी, यू नो, पुरुष जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऐसा सोचो। अच्छा, और ये धन, मान, यश, ये कैसा है जिसके पीछे हम दौड़ते हैं यहां से? सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी है। अब हमारे कहने की दरकार नहीं है, हम सबका ये अनुभव है, सबका अनुभव है। अब आप रिटायर कर गए ऑफिस से, अब कौन पूछता है आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कि नहीं थे? आप कोई, आपका कोई यश वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, तो वेदांत क्या है? दुनिया की किसी चीज का केयर न करना वेदांत है। आप किसी भी चीज को महत्वपूर्ण दृष्टि मत दीजिए, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है ऐसा नहीं सोचना है। समझदार व्यक्ति कामनी, कांचन और कीर्ति को महत्व नहीं देता है। कामनी, कांचन, कीर्ति के अंदर सारी आपकी इच्छाएं आ गई, इनको महत्व नहीं देता। वैराग्य मन को शांत करता है और निग्रह में सहायक है, निग्रह में सहायक है। तो अगर आप यहां पर देखिए, भगवान केवल वैराग्य कहते हैं, मगर आप जो है अगर तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि अगर पढ़े हैं तो आप देखिएगा कि साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति के अंदर पहला शब्द विवेक आता है। विवेक पूर्वक वैराग्य जो है वो टिकता है, दूसरा वैराग्य टिकता नहीं है। विवेक क्या करना है कि अनात्म वस्तु हमको कभी भी पूर्णता नहीं देगी, कभी हम पूर्ण नहीं होंगे, फुलफिलमेंट नहीं होता है पूरा। फिर दूसरे दिन मन करता है कि और पैसे चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, पूर्ण नहीं होता है। तो कोई भी कठिन काम करना हो ना तो उसके लिए साधन सही होना चाहिए, साधन सही करना चाहिए। किसी भी कठिन काम को आप उसको टुकड़े टुकड़े कर लो, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। मान लो आपको घड़ी खोलनी हो, रिस्ट वॉच छोटी सी है, अब आप इतना बड़ा वो लकड़ी मिस्त्री का जो अगर स्क्रू ड्राइवर ले आए, इतना बड़ा 3 फुट का होता है, उससे आप खोलना चाहे उसको घड़ी को, तो घड़ी खुलेगी क्या? नहीं, नहीं खुलेगी वो, उसके लिए बहुत छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको। तो जैसा आपका काम है, जैसा कर्म है, उसके उपाय, उसके हिसाब से ही तो आपको उपाय देखने होंगे, उसका साधन लेना होगा। इसका साधन क्या है भाई, मनोनिग्रह का साधन क्या है, मुझे साधन बताइए। तो एक तो उन्होंने बताया कि वैराग्य है, और दूसरा क्या है? बोले अभ्यास है। अभ्यास से क्या होगा? बोले अभ्यास से बहुत चीजें सिद्ध हो जाती हैं, बहुत चीजें अभ्यास से सिद्ध हो जाती हैं। देखो हम लोग कभी कभी हॉथन मॉल में जाते थे, 2-2.5 महीने हो गए हम गए नहीं हैं, तो कभी कभी वहाँ पर जो है महिलाओं को देखते हैं, वो कैसे हाई हील, यू नो, ऐसे उसके नीचे ये 3 इंची 4 इंची हील के नीचे जो होता है, अब वो ठप 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 करके चलती है आराम से। आप हमसे कहें करने के लिए, हम तो 2 कदम के बाद गिर जाएंगे और नहीं तो पाँव में मोच आ जाएगी। कैसे चलते हैं, अभ्यास किया उन्होंने। या बैले डांस को करते हुए देखिए, अंगूठे पर टो पर खड़े हो जाएंगे। कैसे किया उन्होंने, आप खड़े होकर देखिए, कल आपको जो है ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ जाएगा। मगर वो करते हैं, वो लोग करते हैं। कैसे किया उन्होंने, अभ्यास किया। देखो चींटी भी कितनी छोटी होती है, मगर वो ग्रेनाइट के ऊपर कंटिन्यूस चलती जाए, एक लाइन लगा के चलती जाए, तो आप देखिएगा कुछ दिन के बाद वहां एक लाइन पड़ गई। क्या हुआ, अभ्यास, कंटिन्यूस जा रही, कंटिन्यूस जा रही, कंटिन्यूस जा रही है। और एक आपको एग्जांपल देते हैं, आपका कोई नल या कोई टैप अगर लीक कर रहा है बाथरूम में, यहां तो पता नहीं भी लग सकता है, मगर लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा, वो पानी की एक लाइन बन जाती है। कैसे हुआ, कंटिन्यूस अभ्यास, बार बार एक बूंद करके गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, एक दाग हो जाता है। या आप गंगोत्री में चले जाएं, पानी का फ्लो इतना तेज है वहां पर, वो पत्थर को पॉलिश कर देता है। देखो आप रफ पत्थर डाल दो वहां पर, और उसके बाद 1 साल के बाद में फिर जाके देखने के लिए जाओ, पत्थर पॉलिश हो जाएगा, और या उसको तोड़ देगा। अभ्यास, कंटिन्यूस अभ्यास के कारण ये सब होता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी अभ्यास हमको चाहिए, अगर अपने मन को हमने शांत करना है। मगर अभ्यास समय लेता है, अभ्यास समय लगेगा इसके अंदर में। पतंजलि कहते हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर आसेवित दृढ़ भूमि। सातु दीर्घ काल, बहुत दिनों तक, आसेवित, आसेवित मतलब भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसको करते जाओ, करते जाओ, फिर दृढ़ भूमि होगी, फिर वो बैठ जाएगा, अटक जाएगा। शंकराचार्य जी कहते हैं, अभ्यास से अर्थात किसी चित्त भूमि में, चित्त भूमि मन के अंदर, एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ति करने से, एक वृत्ति बार बार आती है, कैसी वृत्ति है, विषयों की वृत्ति आ रही है, बार बार आ रही है, हमको वैराग्य करना है, तो विषय से वैराग्य करना है, तो विषयों की वृत्ति आती जा रही है करने से, और दृष्ट तथा अदृष्ट प्रिय भोगों को बारंबार हम क्यों करते हैं, कि कुछ हमको फल मिले, कुछ फल हमको तुरंत मिल जाते हैं, कुछ बाद में मिलते हैं, दृष्ट फल तुरंत मिल जाते हैं, अदृष्ट फल बाद में मिलते हैं। दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा हमको कैसे देखना है, उसमें दोष दर्शन, दोष दर्शन, जैसे अभी हमने बताया स्त्री को पुरुष में दोष दर्शन करना चाहिए, भाई क्या है इसका शरीर, 7 धातु है और क्या है, पुरुष को क्या समझना चाहिए स्त्री में, 7 धातु है और क्या है, और कुछ नहीं है। ऐसा अगर दोष दर्शन करे, विषयों में क्या है सुख, नहीं नहीं विषयों में पूरा सुख नहीं है, ये अल्टीमेटली दुख ही देते हैं, इसमें सुख नहीं है विषयों में। अच्छा, इस दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छा रूप वैराग्य, अब आपकी इच्छा नहीं है, अगर हम आपको बराबर बताते रहें कि विषयों में सुख नहीं है, अगर आप विषयों में सुख भी मानते हो तो वो जो है टेम्पररी सुख है, अब इसको आप बाधित नहीं कर सकते कि विषयों में टेम्पररी सुख है, इसको आप नहीं बाधित कर सकते। और फिर अगर वेदांत आपको ये कहे कि यहाँ पर जो है ये टेम्पररी सुख और परमानेंट सुख दोनों मिलते हैं, दोनों ही मिलते हैं, तो आप किस तरफ जाओगे, आप बोलोगे परमानेंट सुख दे दो, और उस परमानेंट सुख का बहुत मजा है, ये विषयों के सुख के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है, हर समय अवेलेबल है, हर देश में अवेलेबल है, ये सब हम आगे देख चुके हैं। तो ऐसे वैराग्य से चित्त के विक्षेप रूप प्रचार को रोका जा सकता है, चंचलता को रोका जा सकता है, अगर आप अभ्यास करें तो रुक जाएगा। तो रजोगुण और तमोगुण मन को अशांत करते हैं। रजोगुण, जब आपके मन में कामना आ जाए ना, तब आप चुप से नहीं बैठ पाएंगे, और उस कामना को पूर्ण करने के लिए आप उठेंगे ही उठेंगे, जरूर उठेंगे, रजोगुण। तमोगुण, तमोगुण भी परेशान करता है आपको। एवं सत्वगुण मन को शांत करता है। अब 36वें श्लोक में भगवान इसी बात को दूसरे तरीके से समझाएंगे।
असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः, दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः।
भगवान कहते हैं अगर आपने मन को वशीकरण नहीं किया, वशीकरण कैसे करेंगे? भगवान ने ऑलरेडी उसका उत्तर हमको दे दिया है। आपको अभ्यास और वैराग्य दो चीज़ें चाहिए। अगर नहीं किया मन को तो बोले योग नहीं होगा, ध्यान योग सफल कभी नहीं होगा। अगर मन विक्षिप्त है तो कैसे ध्यान होगा? ध्यान योग कब सफल होता है? जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं। मन में वृत्ति नहीं है तब मन और आत्मा एक हो जाते हैं। तो यहां कहते हैं असंयत आत्मना जिसने मन को वश में नहीं किया। योग दुष्प्राप्ति मे मति मेरा कहना है, मेरा विचार ऐसा है। भगवान का विचार है कि अगर आपने मन को अपना संयमित नहीं किया, निग्रह नहीं किया, तो आपको योग में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, दुष्प्राप्य। अच्छा, मगर वशे आत्मना जिसने वश में कर लिया। अच्छा, तू यतता मतलब प्रयत्नशील आदमी, कोई आदमी प्रयत्न करके उसको जो है अभ्यास और वैराग्य के साथ में उसको निग्रह कर लिया, वश में कर लिया मन को। शक्य अब आप तुम उपायतः, शक्य सहज है, अब आप तुम प्राप्त, सहजता से पा जाएगा। तो आपने मन को निग्रह, उसका जो उपाय बताया है, उपायतः क्या उपाय बताया गया? अभ्यास और वैराग्य, ये उपाय है। अभ्यास और वैराग्य से जिसने अपने मन को वशीकरण कर लिया, उसके लिए सफलता योग के अंदर सहज है, शक्य है, सहज है। अच्छा, असंयत आत्मा जिसने अभ्यास एवं वैराग्य से अपने मन को निग्रह नहीं किया, उसने प्रयत्न नहीं किया पूरा, तो उसका योग नहीं होगा। और उपायतः यतता जिसने उपाय को लगाया, क्या उपाय? जो उसका साधन है, क्या साधन है मन को निग्रह करने का? अभ्यास और वैराग्य। दूसरे कोई साधन से नहीं होगा मन निग्रह। मन को अगर निग्रह करना है तो अभ्यास और वैराग्य से ही करना होगा। ऐसी वशीकृत मन से योग को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, हम पढ़ते बहुत हैं, केवल उपाय को जानने से ही योग की सिद्धि नहीं होती है। मन को निग्रह जानने का तरीका हम लोगों ने सबने जान लिया, अभ्यास और वैराग्य। केवल इसके उपाय को जान लेने से ही आपकी योग की सिद्धि नहीं होगी। योग की सिद्धि कैसे होगी? जब उस उपाय को आप जिएंगे, उस उपाय को आप प्रयोग में लाएंगे, उस उपाय को जब आप जीवन में उतारेंगे, जब आपके जीवन के अंदर वैराग्य आएगा, अभ्यास से मन को बार बार वापस लाएंगे आत्मा की तरफ, तब योग सिद्ध होगा। केवल उपाय जान लेने से ही सिद्धि नहीं मिलेगी, आपको उस उपाय को जीना होगा। अच्छा, अब अभ्यास किसको कहते हैं? बोले एक बार दो बार करने को अभ्यास नहीं कहते। एक बार दो बार कर लिया, हमने चेष्टा किया था, मेडिटेशन में बैठे, अंकल जी ने कहा था सूर्योदय के पहले उठना, नहा धो के उसके बाद में तुम बैठना, हमने किया भी, अपनी नींद भी खराब की, एक हफ्ता एक महीना करते रहे, कुछ नहीं हुआ, नींद आती रही। ध्यान के समय नींद आ रही थी, तमोगुण आ रहा था ध्यान के। अच्छा, केवल भगवान ही नहीं ऐसा कहते हैं कि ये उपाय है, सब महात्मा जिन्होंने इसको प्रयोग किया है वो सब का सब इसका अनुमोदन करते हैं, सब अनुमोदन करते हैं कि नहीं ये सही है जो कहा गया है यहां पर, ये एकदम सही है कि अभ्यास और वैराग्य से आप उसको निग्रह कर सकते हैं। तो हठ निग्रह संभव नहीं है, क्रम निग्रह संभव है। क्रम निग्रह से आप मन को शांत कर सकते हैं। अब अर्जुन का एक प्रश्न आता है।
अर्जुन युवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् काम गतिं कृष्ण गच्छति अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति।
देखो, एक व्यक्ति जो है भगवान के कहने के हिसाब से योगाभ्यास कर रहा है। शंकराचार्य जी लिखते हैं, योगाभ्यास को स्वीकार करके जिसने इस लोक और परलोक की प्राप्ति के साधन रूप कर्मों को तो त्याग कर दिया। भगवान ने कहा ना वैराग्य चाहिए। वैराग्य का मतलब क्या है? मेरे को यहाँ की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मेरे को स्वर्ग भी नहीं चाहिए। क्यों भाई, स्वर्ग क्यों नहीं चाहिए? अरे वहाँ से भी वापस आना पड़ता है, वो भी टेम्पररी है, और यहाँ की सब चीज़ें विषय भी हैं वो भी टेम्पररी हैं। तो कोई भी विषय अगर वो टेम्पररी हो तो वो आपको परमानेंट सुख कैसे दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता है। तो आपकी समझ में आ गया, आपने जो है स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद में योग सिद्धि का फल, मोक्ष प्राप्ति का साधन, पूर्ण ज्ञान जिसको मिलता नहीं है। अब आपने यहाँ पर कर्म छोड़ दिए, कर्म छोड़ दिए मतलब आपने स्वर्ग आदि पाने की भी अब चेष्टा छोड़ दी, और यहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा सुख हमें मिले, $1 मिलियन के बाद $2 मिलियन, $3 मिलियन की प्राप्ति हो, ये भी छोड़ दिया। आप साधना में लग गए और वहाँ पर मुक्त भी नहीं हुए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। फिर भगवान यहाँ पर कहते हैं, ऐसे जिस योगी का चित्त अंतकाल में योग मार्ग से विचलित हो गया हो, उस योगी की नाश की आशंका करते हुए अर्जुन पूछते हैं। ऐसा केस भी तो हो सकता है, हम लोग की उम्र हो गई है, देखो है? हमने अभी गीता पढ़नी शुरू की है और भगवान के कहने के कारण हमने जो है सारे काम में कर्म छोड़ दिए। अब यहाँ पर भी हमने छोड़ दिया कि हमको और विषय नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कोई कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, साधना शुरू कर दी, करने के बाद में अब मुक्ति नहीं मिली, इधर भी छूट गया उधर भी छूट गया, दोनों तरफ गया, दोनों कुल गया, दो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तो यहाँ पर 37वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है, अयति, अयति मतलब अप्रयत्नवान, जिसने अपने आप को संयम नहीं किया पूरा, है पूरा संयम नहीं किया। देखो, मन को निग्रह करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भगवान एक अर्जुन एक शब्द युद्ध करता, अयति, उसने पूरा संयम नहीं किया, जितना संयम करना चाहिए था उतना संयम नहीं हुआ, उतना प्रयत्न उसने नहीं किया। श्रद्धा उपेत, मगर श्रद्धा है इसमें, ध्यान योग के अंदर श्रद्धा है, वो चाहता है ध्यान योग को, उसके अंदर उसका विश्वास भी है। योगा चलित मानस है, मगर जिसका मन योग से विचलित हो गया, चलित चल गया फिर वहां से। अब अर्जुन वर्ड चंचल यूज नहीं कर रहा है, देखा आपने, अब चलित किया उसने, चलित मानस है, मन जो है विचलित हो गया, फिर से चलने लग गया। अप्राप्य, प्राप्त नहीं हुआ, क्या? योग संसिद्धि, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, अप्राप्य। काम गतिम कृष्ण गच्छति, किस गति को प्राप्त होता है, किस गति को प्राप्त होता है। देखो अर्जुन की भी उम्र जो है उस टाइम में हमारी उम्र जैसी थी, 70-72 साल, आप लोग तो काफी यंग हो। तो अर्जुन पूछता है कि अगर आपके हिसाब से हम काम करना शुरू कर दें, जो उपाय आपने बताया है, अभ्यास और वैराग्य शुरू कर दें, वैराग्य का मतलब हम कोई कर्म कांड नहीं कर रहे हैं, न साकाम कर्म कर रहे हैं, अगर साकाम कर्म करेंगे तो ये फल यहाँ मिलेगा, अब हम कर्म कांड करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो न हम कर्म कांड कर रहे हैं न सकाम कर्म कर रहे हैं, न हम यहाँ का सुख पा रहे हैं न स्वर्ग का सुख पाने वाले हैं हम, और आपकी साधना से हिसाब से वैराग्य ले लिया हमने, हमको यहाँ की वस्तु नहीं चाहिए, हमने दोष दर्शन देखा उसके अंदर, आपने जो कहा एकदम सही है, 100% सही है, मगर हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। मंजिल जो हमारी है भगवत प्राप्ति की, जो मंजिल है वहां तक नहीं हम पहुंच पाए। अच्छा, श्रद्धा उपेत, साधक में श्रद्धा है, साधन चतुष्टय संपन्न है वो आदमी। साधन चतुष्टय के अंदर एक जो है सठ संपत्ति के अंदर श्रद्धा भी है। अच्छा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आगे हम पढ़ चुके हैं, जिसमें श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलेगा, जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। साधक गुरु के पास भी गया है, उसने श्रवण मनन निधि ध्यासन भी किया है। अच्छा, अयति, मगर यत्न पूरा नहीं किया, श्रद्धा है, जितना प्रयत्न करना चाहिए था उतना नहीं किया। हम सब उसी स्थिति के अंदर है। देखो ये हमारी कहानी है। क्या कहानी है हमारी कहानी है, हम श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं, निधि ध्यासन का प्रयास भी करते हैं, मगर जितना प्रयत्न हमको करना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं हो पाता। कुछ कारण बस, क्या कारण हम देखेंगे, क्या कारण बस हम प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। योगाचलित मानस, योगाचलित जहां जीव ब्रह्म एक के होना चाहिए था, जहां मन और आत्मा एक होना चाहिए था, वहां से हम विचलित हो गए, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। कोई प्रतिबंध है, कोई कारण है इसमें, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एक कारण है आलस्य, एक कारण है आलस्य। हम सुनते हैं ना, फिर आलसी हो जाते हैं, अच्छा करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, सवेरे उठेंगे, आज आज रहने देते हैं, आज थोड़ा मौसम खराब है, अभी सूर्योदय में देरी है, आज क्लाउडी है, सनराइज जो है 11 बजे होगा, तो सो लेते हैं थोड़ा सा। अंकल जी ने कहा था सूर्योदय के पहले उठना है, आज हम सोने के पहले देख लिया था कब जो है सूर्योदय है कल, उसके हिसाब से थोड़ा सो ले, आलस। दूसरा जो है उसके अंदर कारण हो सकता है कि आप जो है थोड़ी सी भोग वासना आ गई है। भोग वासना आ गई मतलब आप ध्यान में बैठे हो, मन में आया थोड़ा सा कॉफ़ी पी लें, आज तो अभी कॉफ़ी नहीं पिया, कॉफ़ी पी के बैठते शायद ध्यान अच्छा लगता, देखो वासना आ गई वहाँ पर, आप ध्यान से उठ गए, इतनी प्रबल आपकी मॉर्निंग टी या आपकी कॉफ़ी की वासना है कि आप ध्यान में बैठे और वो वासना आ गई, या तो आलस आ गया, देखो तमोगुण है, या रजोगुण आ गया आपको परेशान कर रहा है, कॉफी 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 कॉफी, दो ही ठीक है, भोग वासना किसी आ गई, बस उसके कारण जो है आप बैठे नहीं, फिर ज्ञान में ध्यान के अंदर में आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। काम कर्म आपने छोड़ दिया, कामकर्म नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि कामकर्म हमको बांधता है, हमने छोड़ दिया उसको, कामकर्म नहीं करते हैं, निष्काम कर्म भी कर रहे हैं मगर प्रयत्न पूरा नहीं है, जितना होना चाहिए प्रयत्न उतना नहीं हो रहा है। अप्राप्य योग संसिद्धि, योग में सफलता नहीं मिल रही है, योग में सफलता नहीं मिल रही, अगर आप प्रयत्न पूरा नहीं करोगे, अभ्यास पूरा नहीं करोगे तो कैसे होगा। आपको सिद्धि अगर लेनी है आपको अंगूठे के बल पर अगर खड़ा होना है तो क्या दो बार करने से हो जाएगा? नहीं होगा, प्रयत्न करना होगा उसके लिए। काम गतिम कृष्ण गच्छति, यह अर्जुन का प्रश्न है कि उसकी गति क्या होगी, क्या होगा उसको। हमको तो लगता है कि वो दोनों तरफ से गया, यहां भी उसको सुख नहीं मिला, उसने छोड़ दिया, कामकर्म नहीं कर रहा है और न स्वर्ग प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है और न मुक्ति मिली। हिंदी में कहावत है ना, घर का ना घाट का, क्या हुआ उसका। अच्छा, तो ये प्रश्न किसका हो सकता है? देखो, इसको प्रश्न को अच्छी तरह से समझो, ये प्रश्न योगारूढ़ का नहीं हो सकता। योगारूढ़ कौन है? जो सक्सेसफुल हो गया, जो प्रयत्न के अंदर सफलता प्राप्त कर चुका है, योग में आरूढ़ हो गया। योग में आरूढ़ हो जाना, योग में सफलता प्राप्त करना, जो योगारूढ़ हो गया उसके लिए ये प्रश्न नहीं है। योगारूढ़ हो गया तो उसको मुक्ति तो मिली गई, सफलता तो उसको मिल गई, और न ही ये कर्मयोगी के लिए प्रश्न बन सकता है। कर्मयोगी काम कर्म छोड़ दिया, निष्काम कर्म शुरू कर दिया, कर्मयोग, कर्मयोगी को क्यों नहीं लगता है ये? तो भगवान ने ऑलरेडी इसको कहा है कि प्रत्यवाय न विद्यते, वो थोड़ा करे या ज्यादा करे, पूरा करे या गलत करे, उसमें कर्मयोग अगर कर रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो ये प्रश्न न तो योगारूढ़ के लिए है न कर्मयोगी के लिए है, तो किसका प्रश्न है? ये प्रश्न पांचवें अध्याय का सर्वकर्म सन्यासी के लिए है। सर्वकर्म सन्यासी का मतलब क्या हुआ? आपको अगर याद हो तो हम फिर से याद दिला देते हैं, जिसने सब छोड़ के श्रवण मनन निधिध्यासन शुरू किया है, सर्वकर्म सन्यासी, जिसने सारे बाह्य कर्म छोड़ दिए, बाहर के कर्म छोड़ दिए, अब उसने सारा मन जो है श्रवण मनन निधिध्यासन में लगाया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? उसको स्वर्ग नहीं चाहिए। जो श्रवण मनन निधिध्यासन जो करता है, आप लोगों ने श्रवण किया है, आपको अगर कोई पूछे स्वर्ग चाहिए, आप सब बोलोगे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे फिर तो वापस आना पड़ेगा, इतनी पूजा पाठ करने के बाद स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस क्या मतलब हुआ इसका? मतलब स्वर्ग नहीं मिलेगा। अच्छा, तो उसे उसने उपासना भी छोड़ दी। देखो, उपासना भी छोड़ दी, जिस आदमी को मुक्ति चाहिए वो उपासना छोड़ देता है। उपासना किस लिए होती है? ऊंचे लोक में जाने के लिए। ऊंचे लोक में स्वर्ग जाना हो या स्वर्ग के ऊपर लोक में जाना हो तो उसके लिए उपासना करनी पड़ती है। तो जिसको मुक्ति चाहिए वो इन लोकों में नहीं जाना चाहता। ये जो ऊपर के सात लोक है ना, यहां सबसे वापस आना पड़ता है। भगवान ने गीता में आएगा, आगे आएगा कि ब्रह्म लोक तक जाके वापस आना पड़ता है, आना पड़ता है। तो जिसको ये पता है तो वो फिर क्यों जाएगा स्वर्ग में, महाजन तपस्यम लोक में क्यों जाए? अगर वापस ही आना है तो नहीं जाएंगे। और ब्रह्म लोक में जाने से क्या होगा उपासना करके? बोले वहां क्रम मुक्ति है, क्रम मुक्ति है, क्रम मुक्ति। दो किस्म की मुक्ति हो, एक है सद्योमुक्ति, तुरंत यहां अभी 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 तुरंत, और एक होती है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति और ज्ञान दो जगह मिल सकता है, तीसरी जगह नहीं है। ज्ञान आपको इस मर्त्यलोक में मिल सकता है और ज्ञान ब्रह्मलोक में मिल सकता है। ज्ञान केवल दो जगह मिल सकता है, ब्रह्मलोक और मर्त्यलोक में। ब्रह्मलोक के अंदर जो है क्रम मुक्ति है और मर्त्यलोक में सद्योमुक्ति है। सद्योमुक्ति अभी तुरंत, आपकी मर्जी है। आप हॉपिंग फ्लाइट में दिल्ली जाना चाहते हो तो रुकना पड़ेगा, ब्रह्मलोक में उतरो, उसके बाद में फिर मुक्ति मिलेगी। दिल्ली अगर आपका मुक्ति स्थल है तो या बनारस है आपका मुक्ति स्थल तो वहां जाने के लिए हॉपिंग फ्लाइट में जाओ, या डायरेक्ट फ्लाइट ले लो, मुक्ति की डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है। कौन सी डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है? चिन्मय मिशन है, जहां आपको ज्ञान मिलता है, सब जगह ज्ञान नहीं मिलता है। तो हमारे पास में चॉइस है सद्यो मुक्ति की और क्रम मुक्ति की। आप ये सोचते हो कि ऊपर वाले लोक के अंदर जो है सुख है, जरूर सुख है, ज्यादा सुख है, मर्त्य लोक से ज्यादा सुख है, मगर उन सब लोक से वापस आना पड़ेगा। जितना पुण्य किए उतनी देर वहां रहेंगे, उसके बाद में फिर वापस आना है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक की आयु कितनी है? ब्रह्मलोक की आयु आपको बताया ब्रह्मा जी की जो लाइफ है, ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी है? हमारी भी 100 साल है, उनकी भी 100 साल है, मगर घड़ी उनकी अलग है, हमारी घड़ी अलग है। हमारी घड़ी अलग है, हमारे जीवन के 100 साल जो होते हैं मर्त्यलोक के, वो ब्रह्मा जी की घड़ी के हिसाब से 0.0001 सेकंड होते हैं। उनके सेकंड का 1000वां हिस्सा का एक हिस्सा इज इक्वल टू 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनकी घड़ी अलग है, यहाँ घड़ी अलग है। अब सोचो आप अगर अपने चॉइस किया कि क्रम मुक्ति, हमको हॉपिंग फ्लाइट लेनी है, तो हॉपिंग फ्लाइट आपको मिल जाएगी, जाओ वहाँ पर बैठे रहो ब्रह्मलोक के अंदर। ब्रह्मा जी की आयु तो बड़ी लंबी है, बोले बैठो, जल्दी क्या है, अभी तो आए हो, बैठो यहाँ पर। फिर आपका देखेंगे कि भाई आपका वैराग्य है कि नहीं, आप सुख के अंदर ही लिपटे हुए हो कि नहीं, आपका मन अब शास्त्र पढ़ने में आता ही नहीं है, सवेरे उठ के आप जो है फिर चैंटिंग नहीं करते हो, सवेरे उठ के वैदिक चैंटिंग करनी पड़ती है, ये सब नहीं करते हो, तो ब्रह्मा जी सोचेंगे चलो खेलते रहो, तुम अभी खेलो, सुख में रहो, सुख में रहो। जब देखेंगे उसका वैराग्य आ गया, कैसा वैराग्य? नचिकेता की तरह वैराग्य चाहिए। नचिकेता को जब सब चीज़ें यमराज ने दी, उसने कहा नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि ये सब नाशवान चीज़ें हैं, मेरे को नाशवान चीज़ नहीं चाहिए, हमको नित्य चीज़ चाहिए। आत्मा के बारे में बताओ तुम हमको। जिस टाइम ऐसा वैराग्य होगा, तब ब्रह्मा जी आपको ज्ञान देंगे। क्या है वो ज्ञान? जीव ब्रह्म ऐक्य, तुम वो परमात्मा हो। अब बताओ, ये सुनने के लिए आपको वहां उतनी देर तक बैठने की दरकार है क्या? ब्रह्म लोक में जाके अगर आपको सुनना है कि तत्त्वमसि, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, या यहां सुन लो, अपने को तैयार कर लो। जैसा भगवान कहते हैं कि आप अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को निग्रह कर लो, करके आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो। तो प्रश्न है, ऐसे साधक का क्या होगा? ऐसे साधक का क्या होगा? कौन सा साधक? सर्व कर्म सन्यासी, नॉट योगारूढ़, नॉट कर्मयोगी। सर्व कर्म सन्यासी कौन है? जो श्रवण मनन निधि ध्यान कर रहा है, उसने काम्य कर्म बंद कर दिए हैं, उसने उपासना बंद कर दी है, उसको ऊंचे लोक में नहीं जाना है, और उसने साधना शुरू की जैसा भगवान कह रहे हैं ऐसा शुरू किया, मगर उसके प्रयत्न में थोड़ी कमी थी। प्रयत्न में कमी होने के कारण में अब वो उसकी क्या गति होगी, ये उसका प्रश्न है। और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल अर्जुन दे रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण। 38वां श्लोक,
कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट, छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो, विमूढो ब्रह्मणपति, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः, छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो, विमूढ़ो ब्रह्मनपति।
कच्चित, कच्चित मतलब क्या, उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम, उभय विभ्रष्ट में दोनों ओर से भ्रष्ट हो गया, उभय मतलब दोनों तरफ से। कौन? छिन्न अभ्रमम, छिन्न अभ्रम मीन्स बादल। देखो बादल जो है कई बार आप देखो को बैठ बैठ के, हम लोग बीच बीच में काम नहीं रहता है तो बाहर बैठ के देखते हैं बादल का समूह, उसमें से एक छोटा टुकड़ा बादल का अलग हो गया, अलग हो गया। अब जो है वो छोटे टुकड़े में इतना फोर्स नहीं है कि वो अपने गंतव्य स्थल पर जा पाए। दूसरा जो बड़ा टुकड़ा है वो चल रहा है, उसका तो विंड फोर्स में जा रहा है, मगर उससे थोड़ा सा अलग हो गया, अलग हो गया। अब वो क्या होता है कि थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो खत्म हो गया, है ही नहीं हुआ था। तो अर्जुन कहता है कि कहीं उसका ऐसा हाल तो नहीं होता, न नश्यति, वो नष्ट तो नहीं हो जाता। ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति जो कि रजोगुण या तमोगुण के कारण, भोग के कारण या आलस्य के कारण नष्ट तो नहीं हो जाता, उसने शुरू की अपनी साधना मगर साधना खत्म नहीं हुई। अप्रतिष्ठ आश्रय रहित पुरुष, कोई आश्रय नहीं है। महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणपति, महाबाहो कौन कह रहा है, महाबाहो किसको कह रहा है? हम उस बराबर जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहते हैं, यहां कौन कह रहा है? यहां अर्जुन भगवान को कह रहा है। अर्जुन कह रहा है भगवान को महाबाहो, विमूढ़ है मोहित ब्रह्मणपति, भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो मोहित हो गया, मोहित हो गया। न उभय विभ्रष्ट, उभय विभ्रष्ट मतलब उसको काम में कर्म भी नहीं मिला, मुक्ति भी नहीं मिली, उभय दोनों चीज, उभय मतलब दो। सर्व कर्म सन्यासी जिसने काम कर्म छोड़ दिया और भगवान के पथ की तरफ जाने लगा, तो काम कर्म का भी फल नहीं मिल रहा है और मुक्ति तक भी नहीं पहुंच पाया, उभय विभ्रष्ट दोनों ही गया। छिन्न अभ्रमिव, जैसे बादल का एक टुकड़ा समूह से अलग हो गया, गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाएगा। किसी दिन फुर्सत हो ना तो आप देखा करो, बादल जब जा रहे हैं हटा देखिएगा, एक टुकड़ा बादल का अलग हो गया। अब वो छोटा टुकड़ा जो अलग हो गया, अब उसकी कोई स्थिति नहीं रही, कुछ देर के अंदर गायब हो जाता है। अप्रतिष्ठा महाबाहो, अप्रतिष्ठा निराश्रय, काम कर्म भी छोड़ा, स्वर्ग भी नहीं मिला, उपासना भी नहीं उसने छोड़ दी, ब्रह्मलोक तक भी नहीं पहुंचा और न ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। विमूढ़ ब्रह्मणपति, ब्रह्म मार्ग में मोहित हो गया। साधक जो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में ही भ्रष्ट हो गया, काम्य मार्ग और ज्ञान मार्ग, काम्य कर्म छोड़ दिया, ज्ञान मार्ग पकड़ा था उसने, ज्ञान मार्ग की पूर्णाहुति तक खत्म तक नहीं पहुंच पाया, वहां तक नहीं पहुंचा। ज्ञान मार्ग की पूर्णाहुति क्या है? आप जो है जीव ब्रह्म ऐक्य, आपको ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, वहां तक नहीं पहुंच पाया, मगर साधना उसने शुरू की थी। तो भ्रष्ट का कारण क्या हुआ? भ्रष्ट के कारण तीन हैं। एक तो आलस्य है, दूसरा जो है भोग वासना आ गई, तीसरा जो है प्रारब्ध के कारण शरीर छूट गया। तीन हुई, एक तो आलस्य, दूसरा भोग वासना आ गई, तीसरा प्रारब्ध के कारण शरीर छूट गया। वो जो है उसका क्या है? अभी उसके अंदर थोड़ा सा और प्रश्न है अर्जुन का, वो और थोड़ी क्लैरिटी मांगता है इसके अंदर में, तो उसको हम देखेंगे, भगवान इसका भी उत्तर देंगे क्या होता है उसका। तो ये हमारी गति का सवाल है, हमारी गति का सवाल। हम लोग जो है श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी साधना भी कर रहे हैं, थोड़ी साधना कर रहे हैं हम सब, तो हमारी गति क्या होगी? हालांकि हमने पूरे काम्य कर्म छोड़े नहीं है, थोड़ा सा काम्य कर्म करते हैं, थोड़ा सा कर्मयोग भी करते हैं, थोड़ा ज्ञान भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये ज्ञान की जो हम साधना कर रहे हैं, इसका फल क्या है, इसका फल क्या है? अगर मान लो इस जीवन के अंदर सिद्धि नहीं मिली, तो हमने जो प्रयास किया उसका फल क्या है, उसका फल क्या है? तो भगवान उसका फल बताएंगे, उसका फल बताएंगे, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।